نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في قرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدل الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل والمرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، देखें, अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान हो कि भाई कोई बीमारी फैलने वाली है, मिसाल के तौर पर फ्लू है, बहुत खतरनाक किस्म का जो फैलने वाला है, यह हैजा है, डायरिया है, कोई बीमारी है, तो भाई बहुत सख्त बीमारी है ये, अपनी हिफाजत करो इससे। ऐलान है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत का फ़र्ज है बताना। अब हम क्या करेंगे फिर उस पर परेशान हो जाएंगे सब लोग। और अब ये नहीं पता कि भाई मुझे होगा या आपको होगा किसे होगा। हर आदमी की कोशिश ये होगी कि उसकी कोई हिफाजत करे। जैसे कि हर साल हम इंजेक्शन लगवाते हैं फ्लू का, भी फ्लू होने वाला है, हर एक को तो ना फ्लू होता, लेकिन हिफाजत ही इंसान करता है और जाके इंजेक्शन लगाता है या कि हम बच्चे हैं इस बीमारी से। बहुत फिक्र हो जाती है, बीमारी होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और जहर सेहत ख़राब होगी, मौत तक भी हो सकती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के लिए सबसे शफीक मेहरबान अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाकर भेजा, और जिनके लिए कुरान ने किया, हक ने फरमाया इन्नकला रहमतुलिल आलमीन, फरमाया इसके लिए कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बन गए हैं। ख़ास तौर पर एक जगह ये फरमाया कि बिलखसूस ईमान वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शफीक हैं और मेहरबान हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको इस अंदाज से इस जहान के अंदर भेजा तो क़यामत तक के लोगों के लिए अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए से कुरान में बार बार कुल 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 कहकर फरमाया कि आपको हमने भेजा इसलिए है, आप बशीर भी हैं और नज़ीर भी हैं, तो लोगों को इतला फरमाएं। आप नबी ने अपनी पूरी ड्यूटी दी जिसलिए अल्लाह पाक ने भेजा था, और बशीर भी बने और नज़ीर भी बने, क़यामत तक के लिए हमें हर चीज़ बता दी उम्मत को, और ये ऐलान किया कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लिए ख़तरनाक होंगी, परेशान कौन होंगी तुम्हारे लिए, आखिरत के लिए बहुत ख़तरनाक होंगी। है ना, कुरान में ऐलान किए नबी पाक। तो अब उम्मत का क्या काम है? जैसे हुकूमत बताती है तो हम परेशान हो जाते हैं, बचाते हैं ना अपने आप को, तो उम्मत का ये काम है। हम नबी करीम की उम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका फरमान है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पे शफीक है, हमें तंग करने के लिए है, हमें परेशान करने के लिए थोड़ी है, बल्कि हम बहुत सी चीज़ें नहीं जानते, बल्कि अक्सर नहीं जानते। आपने हमें बताया तो हमें पता चलेगी, ये तो बहुत बड़ा एहसान है, इंसानियत के मोहसिन है जिन्होंने हमारी आँखों को खोला कि भाई इस घड़े से बचो, इस बुराई से बचो। हुकूमत ऐलान कर दे भी फ्लू से बचो तो हम कितना वाजे माशा, बड़ा काम किया NHS ने, बड़ा काम किया, बच के लोग इतने महफूज हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से जो जहन्नुम है उससे बचाने के लिए आए थे। तो कितने अफसोस की बात है कि हम एक हुकूमत का ऐलान हो तो उस पर इतने फिक्रमंद हो जाते हैं और चलना शुरू हो जाते हैं, तकलीफ भी होती फिर भी इंजेक्शन लगवाते हैं। लेकिन जो इतने बड़े नबी हैं और खुशकिस्मती ये है कि हमारे ताल्लुक है उनके साथ, उनके कोई फरमान हम बाईपास कर दें, कितनी बड़ी हमाकत है, किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। बड़ी गौरतलब बात है ये, आप सोचें। मैं तकरीरें नहीं करता, दिल में जो कोई गम आता है, ख्याल आता है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बस। मैं उस काम में ना मैं मुकर्रर हूँ, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं कोई सूफी हूँ, एक आम इंसान हूँ और आपसे भी गया गुजरा आदमी हूँ। लेकिन अल्लाह पाक जिसके दिल में ख्याल डाल दे तो जो ख्याल आता है फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी सोचने वाली बात है, और बिल्कुल ये ख्याल मेरे दिल में आया आने से पहले, बिल्कुल रास्ते में, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो आदमी सुस्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बेअदबी है कि नबी पाक शायद हमारे पास आ रहा हो और हम उसको इग्नोर कर दें, बाईपास कर दें, तो बचेंगे हम? ये तो शायद इससे तो बच जाएं भी फ्लू हो या ना हो, लेकिन जो आप फरमा रहे हैं वो जहन्नुम तक पहुंचेगा आदमी, अगर नहीं बचा तो कोई नहीं बचा सकता, नहीं हो सकता किसी हालत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, कितना आसान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे फितने आएंगे। गौर से सुनिएगा इस हदीस को, ये क्या है? ये इरशाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको बाईपास नहीं कर सकते हम। अस्तग़फिरुल्लाह, सही हदीस है, देख लें कितने लोग जानते होंगे इस हदीस को। अगर इस हदीस को हम समझ जाएं, आज उम्मत का ये हाल ना होता, नहीं होता यार। ये सजा है कि हमने अपने रहबर को बुला दिया, रहबर को इग्नोर कर दिया हमने, जो हम बचाने वाला था हमारा डॉक्टर जो था, हमने उसे बाईपास कर दिया। नहीं खैर है, कहाँ जाए हम लोग? जो नहीं समझते खैर उनका तो यही है कि वो नहीं मानते तो वो तो चल रहे हैं, लेकिन हम तो भाई तस्लीम करते हैं इस बात को। तो कितनी बड़ी बात की है कि भाई अनकरीब ऐसे फितने आएंगे, ऐसे फितने आएंगे कि बैठने वाला चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। ऐसे फितने होंगे और उस फितने में कोई झांकेगा भी, झांकना समझते हैं, पीप करना ही, ऐसे देख लेना किसी चीज को, दूर से जा रहा है ऐसे देख लिया, यानी इशारतन हल्का से भी उसकी तरफ तवज्जो ही होगी, थोड़ा सी ख्याल करेगा, थोड़ा सा इसको कहते झांकना उर्दू में, तो उसको भी समेट लेगा वो फितने। अल्लाह अकबर, इतनी एहतियात दे दी कि अगर किसी फ्लू वाले के पास बैठेंगे भी आप, ये जहरीला फ्लू लग जाएगा और आपको इसके गिलास में पानी पी लिया तो आपको भी मौत आ जाएगी। मुझे बताएं, भाई के गिलास में पीना छोड़ दूंगा मैं, बीवी के गिलास में पानी पीना छोड़ दूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया अगर तुमने भी इस क्लास में पानी पी लिया तुम भी ताउन हो जाएगा, तुम भी इन्फेक्शन चला जाएगा। बचते हैं नहीं बचते? जान ने मना किया है भाई, इसको हाथ न लगाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अल्लाह की नहीं फरमाया कि इतना ज़बरदस्त इन्फेक्शन होगा उस फितनों का कि जिसने झांक भी लिया, नज़दीक भी गया, उसको समेट लेगा। समेट ला क्या? समेटना होता है उर्दू में फैच करना, खींच लेगा उसको अपनी तरफ, लपेट लेगा, निकल नहीं सकेंगे आप उससे। मैंने और आपने मरना है, जाना है इस दुनिया से, हमने जाना है, किसी वक्त भी जाना है। ये गौर तरफ बात है, किसी वक्त भी हमारा बुलावा आ सकते हैं, हम दुनिया से चले जाएं। गौर से सुनो मेरे भाई बात, तो फिर क्या फरमाया आपने? पहले कंडीशन बताई कि ऐसा ज़माना आएगा, ऐसे फितने आएंगे और फितने की पोजीशन ये होगी, इतने स्ट्रांग फितने होंगे वो। और साथ ही फरमाया कि जिसे किसी को भी बचने की जगह मिल जाए, अल्लाह अकबर, पनाह की जगह मिल जाए तो फौरन पनाह ले लेना। कितनी प्यारी बात है। पहली चीज जो शायद मैं नबी करीम ने हकीकत बता रहा हूँ कि कोई मैं किताब पढ़ के नहीं आया, कुछ दर्द बता रहा हूँ अपने दर्द की बात। ये नहीं कि मैं तैयारी करके आपके पास आ गया, तकीने करूँ, मैं यहाँ बैठूँ आपके सामने मस्जिद, कोई तैयारी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब अल्लाह की तरफ उम्मीद करके अल्लाह ताला तू एक्सप्लेन कर ये चीज़ें हमें, ताकि हम बचें। बचेंगे या नहीं बचेंगे? ये मैं तो नहीं कह रहा, कौन कलवार है? जिसमें सेंस होगी ना कल वो बच जाएगा। मैं तो बहुत डर गया हूँ, वरना ये बात खत्म हो जाती, खत्म हो गई। जितनी मुझे एक हदीस याद भी होती खत्म हो जाती, आगे कौन बता रहे हैं मुझे बातें? ये सोचें आप, सुन क्यों रहे? कौन सुना रहे? अल्लाह के साथ सुना रहे, क्योंकि हम उम्मती हैं, भटके हुए हम लोग। पहली चीज क्लियर कि भाई एक फितने का जमाना है, ऐसे फितने आएंगे। अब हम क्या कहेंगे? पानी बंद हो, ये फितना हो गया। रोटी मिलना बंद हो, ये फितना हो गया। कपड़े नहीं मिल रहे, ये फितना हो गया। लाइटें खराब हो गई, ये फितना हो गया। अपने बना जो फितने बना लें, किसी को फितना कह लें। घर में गैस खराब हो गई, ये फितना हो गया। बच्चा मर गया जी, बहुत बड़ा फितना हो गया। बीवी भाग गई जी, फितना हो गया। खामिद मेरा ख्याल नहीं करता जी, मुझे ये नहीं करता फलानी, फितना हो गया। खामिद बीवी से, बीवी मेरा ये नहीं करती, फितना हो गया। भाई ये हम इतने जानते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए ना, कारोबार नहीं चलना जी, फितना आ गया। फितना है बस, नजर लगी है तुझे किसी, जादू हुआ तेरे पे, टोना हुआ तेरे पे। बस इसी हमारे सरकुलेशन जी है, इससे आगे बढ़े। प्यारे नबी ये चीज़ें बतानी नहीं आए दुनिया की, और तभी आपने सुनी ना आज क्या है? ये दुनिया नहीं, आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए, खैर वफ का। ये पढ़ी ना मौलाना साहब ने रोज़, क्या ऐलान कर रहे हो कि किस चक्कर में पड़े हो, इसको तुम फितना समझ रहे हो, ये कम हो गया, फलां ज़्यादा हो गया, ये चीज़ हो गया, ये तो आज ऐसा है कल तुम भूल जाओगे इस कम को। सगा बेटा मर जाता है, वो हाल झूलता है, उसके बाद महीने के बाद में उसको भूल जाता है। बीवी मर जाती है, उसको भूलता है, दूसरी बीवी आ जाती है। औलाद जो होती है, शादी होती है, उसको भूल जाता है। ये तो भूल भुलैया वाला खेल है, याद रहते हो किसी को? मुझे पता है वाले से कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ से कितनी करते हैं, जिनकी माएँ चली गई मुझे बताएं कितना प्यार करते थे। वो याद आ रही है? कभी याद किया ना? हमने कुरान भी नहीं पढ़ते, उनके लिए दुआएं भी नहीं करते, सोचते भी नहीं कि जो हम अमल करें हम अपनी माँ को कह दें। क्या नुकसान है इसमें? अगर आपने नमाज पढ़ी, आप हल्का से यही कह दें कि अल्लाह जी नमाज पढ़ी मेरी माँ को दे दें, कुछ जोर लगा नहीं? मुझे बताएं कितने आदमी ये बात करते हैं, नमाज पढ़ी दो बाहर। जिसने पाला पोसा वाह बाप तुम्हारे, जिसने तुम्हारा ख्याल किया, तुम इतना नहीं हो सकता कि तुम एक नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद चलो अपने लिए ना मांगो, यही कह दो, जाते जाते कह दो अल्लाह जो नमाज पढ़ी है ये मेरी माँ को बख्श दे, उसका तो काम बन गया। और उसके साथ हमारा ये काम बन गया कि अल्लाह ताला उसके सदके से हमारी नमाज कबूल कर लेगा, जिसका गारंटी नहीं थी उस नमाज कबूल होगी। आज से पक्का वादा करें कि माँ जिंदा हो अल्हम्दुलिल्लाह, या इस दुनिया से रहमत फरमाऊंगी तब भी, जाना सब ने माँ बाप। मेरे शेख का मुझे हुक्म था, खत्म बकायदा तहरीर फरमाया कि खबरदार कोई अमल भी कर तो, मुझे कहा। वो अल्लाह वाले ऐसे होते थे भाई, वो तो एक एक चीज़ को समझाते थे, उनकी मजाली से कुछ और होती थी। अब वो अपने सुना नहीं होते, कहाँ निगाह गई उनकी, किधर निगाह गई है मेरे शेख की? वो तो मुझे जो बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं, मकामा दे रहे हैं जो दे रहे हैं, लेकिन देखें हम जिसको छोटी बात समझते हैं। मैं दिखा सकता हूँ, वार्निंग करके लिखा, खबरदार, ये लफ्ज़ हैं हजरत के, कि कोई अमल भी छोटा करो तुम, अल्लाह किसी अमल की तुम्हें तौफीक दे रहा है तो इसको खाली मत करना, इसका सवाब फौरन अपने माँ बाप को बख्शना। कोई कौन शेख बताते उसको? हाँ अगर मैं याद आ जाऊँ तो मुझे भी दे देना। क्या है ये अल्लाह वाले, कितना झंझोर आप क्या है? अगर सच्चा मुरीद है उसके दिल पे बैठ गया, मेरे शेख का हुक्म है। अब ये आँख खुल गई ना तुम्हारी, असल मुरीद तो वही होता है ना, आँख खुल जाती है उसकी, शेख की बात सुननी नहीं, आँख खुली फौरन। हम भड़के होते हैं, अल्लाह वाले हमें जगाते हैं, और क्या, हम क्यों जाते हैं अल्लाह वालों के पास? पूछने जाते हैं, सिजदे करना जाते हैं, भटके होते हैं रास्ते से, हमारी आंखों को खोल देते हैं। अब वो मेरा मामूल बन गया, अगर मैं भूल भी जाता हूँ ना, फर्ज को मैं कोई नेक काम अल्लाह ने करा दिया भूल गया, तो बस जाते जाते कह देता हूँ ओ गलती होगी, अल्लाह ताला ये सवाब मेरी माँ बाप को दे दे, हम मेरी हजरत को पूछा दे, तो उनके तो मौजें लग जाती हैं, तमाशे लग जाते हैं। लेकिन हम इतने बड़े बड़े कुरान पढ़ते हैं, बस ज़्यादा हुआ तो ये बख्श दिया फला करके निकल गए, बस चलो बस। किसी मजलिस में ये तो एक जमनी बात निकल आई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बाप खुश हो जाए मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात है, अल्लाह भी राजी हो जाता है। तो पता नहीं क्या बात कर रहा है, हदीस सुना रहा था, हदीस तब देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना हमें झंझोड़ दिया इस बात में। पहले क्या चीज़ है, फितना बता रहा था, फितना बता रहा था कि वहाँ चलेगी, बाप चलेगी, ये फितना, इससे आगे बढ़े। ये फितना नहीं, अल्लाह के नबी समझते हैं असल फितना तो वो है जहन्नुम की आग, मैं तुम उससे बचाने आया हूँ, उसके बारे में अल्लाह के नबी बात करें कि फितना क्या है, कौन जाएगा जहन्नुम, देखिए उससे बचाना चाहते हैं। फितना क्या बना, अब असल फितना से नहीं, ये फितने नहीं, फितना असल ये हुआ कि अब इंसान ईमान से खारिज हो जाता है, वो अपने आप को ईमानदार समझता है, उसके पास ईमान नहीं होता, लोग उसको हाजी साहब कह रहे होते, फला फला टाइटल लगा रहे होते, बड़े बड़े उसके इल्मों की बातें कर रहे होते, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं, बड़े बड़े हजरत साहब सूफी साहब कह रहे होते हैं, लेकिन ईमान से खारिज होता है। इस ईमान से खारिज होने का नाम क्या है, सबसे बड़ा इसको कहा है कि अनकरीब अनकरीब ऐसे फितने आने वाले हैं कि वो हालात आ जाएंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी, वो तुम्हें किस पर क्या करेंगे, तुम ऐसा कि तुम्हें जहन्नुम के अंदर धकेलते चले जाएंगे और तुम नहीं समझोगे, अल्लाह के नहीं फरें, और तुम्हें पता भी चलेगा कि हम जहन्नुम में जा रहे हैं। नस्ल हुस्न खात्मा जिसकी बात करते हैं, हुस्न खात्मा, उससे महरूम हो जाएगा आदमी, ईमानों पर जंग लग जाएंगे, हलाल हराम खत्म हो जाएगा, एक अजीब हालत होगी इंसान की, अजीब हालत होगी। मुझे नहीं पता ये वही जमाना है, तो आप भी तजिया कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ हूं, वही बताई कि बैठने वाला चलने वाले से बेहतर, चलने वाला दौड़ने, यानी ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि किसी हालत के अंदर भी इंसान जो है वो अपने आप को संभाल नहीं सकेगा, किसी पोजिशन में अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकेगा, इस कदर तूफान मच जाएगा। किस चीज का, नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिड़ सब कुछ, किस चीज में, ईमान की हालत में सब कुछ नजर आ रहा होगा, भाई तरक्की इस वक्त बहुत हो रही होगी, लेकिन ईमान जो होंगे वो डूब चुके होंगे, इंसान डूब चुके होंगे। ये छोटी सी मैं आपको एक्सप्लेन किया कि फितने का मकसद ये है असल में। तो फितना है क्या, अल्लाह के नबी ने बता दिया सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा फितना। ये जो सब बातें होती हैं इसको आप नोट करते जाएं, हमें अल्लाह में तौफीक दे इसमें अमल करें बचने के लिए, वरना कल का कोई पता नहीं कि हम ईमान के साथ जा भी रहे नहीं जा रहे। और हकीकत है 100% मैं बात कर रहा हूं कि जिसने नबी करीम की इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया वो ईमान के साथ जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। आपकी जबान में वारिक से जब निकल जाता है वो पूरा होकर रहता है। ये तो तारीख है, वाकयात है, मैं उन हदीसों को क्या सुनूं आपको कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। ये जब आपने कह दिया ये ऐसे ही है वो वैसे हो जाता है। इसको मैंने बाईपास किया इस हदीस को कि हमने इस पर तवज्जो ना दी कि फितने हैं, और वो फितने क्या, किस पे डाका मारते हैं, माल पे, औलाद पे, मालों पे, दुकानों पे, किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका असर किस पे पड़ेगा, इंसान के ईमान पर पड़ेगा। ईमान वाली जो चीजें हैं जिनसे ईमान का ताल्लुक है, जिन चीजों से ईमान का ताल्लुक है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप तो बात सुनते ही रहते, जिन चीजों से ईमान का ताल्लुक है, जिसे सबसे बड़ा ताल्लुक ये जगह मैं बैठा हूं मस्जिद, ईमान से ताल्लुक है या नहीं है ना, कुरान ईमान से ताल्लुक है नहीं, सुन्नत रसूल सब ईमान से ताल्लुक है या नहीं, बोलो है या नहीं। अब आप कुछ समझ जाए बात है कि जिन चीजों से भी ईमान से ताल्लुक है वो मफकूद होंगी, फिनिश हो रही होंगी, खत्म हो रही होंगी, तब वो अपने आप को ईमान वाला समझ रहा होगा, अपने तई उसने एक स्टेटस बनाया होगा अपने 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 मजहब का, अपने दीन का, वो जमाना ऐसा होगा कि इसमें सबसे बड़ा क्या मामला होगा कि इंसान जो है खतरा ईमान के अंदर होगा, अल्लाह ना करे इस हालत में इंसान की मौत है। तेरे हदीस उसमें कहते हैं सबसे बड़ा फितना काब बिन अयास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सरकार को ये कहते सुना। अब ये देखें कितना एक्सप्लेन हर चीज कर देता है, पहले फितना बताया, फितने के बाद बताया सबसे बड़ा फितना क्यों होगा, उस पर तो हम बहुत क्या हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। सबसे बिग फितना जो होगा जो इंसान के ईमान को खींच लेगा, ईमान को चूस लेगा, झांकना है खत्म कर देगा, वो क्या उसका फितना है। तो सरकार ने बड़े एक्सप्लेन करके उसको इरशाद फरमाया कि समीत मैंने सुना है नबी पाक से कहते हुए, आपने फरमाया लिकुल्ली उम्मतिन फितना, कि कोई ऐसी उम्मत नहीं जिस पे फितना ना आया हो, ये भी फरमाया आपने, जिस हर उम्मत पर आया है, उम्मत ही तो फितना तो उम्मत है, लेकिन मेरी उम्मत का जो फितना होगा सबसे बड़ा उम्मत में बताता हूं, वो कौन सा है? अलमाल, हाय हाय, दुनिया, पैसा, बम, रियाल, ये रुपया, बस ये सबसे बड़ी निशानी होगी, उसमें डूबा होगा इंसान अलमाल के अंदर। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो इसमें जिस इंसान को डूबा हुआ देखो, कोई एतबार ना करो उसको किसी चीज में, किसी फंक्शन का एतबार ना करो, क्योंकि फितने में डूब चुका है वो शख्स, ही इज इन द फितना। वो जो साउंडिंग उसने की हुई ना अपने साथ, वो आर्टिफिशियल साउंडिंग है, जैसे अंदर क्या होता है कड़वा, ऊपर क्या लगे होते शुगर, तो उसने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किया। अगर वो बचना चाहता तो वो फितना ही ना उसके पास होता, फिर मतलब समझी, जब वो फितना है तो कौन बचा सकता है उसको, जब वो फितना मौजूद है, कौन सा फितना? अलमाल। क्यों कहा इसको सबसे बड़ा? सबसे बड़ा फितना इसकी वजह कि इसकी वजह से, अलमाल की वजह से सबसे बड़ा फितना होता है जो आएगा, वो हलाल और हराम का होगा, क्योंकि सारी बुनियाद हमारी रिस्क है हलाल पर है। एक लुकमा जो हम खाते हैं वही जाके अंदर काम करता है, हमारी इबादत को वही काम करता है। एक ही नमाज जिंदगी में काफी, अगर हलाल लुकमे के साथ इंसान एक नमाज पढ़ लेना, उसका असर देखें आप कहां पहुंचता है, और हराम लुकमे के साथ सारी जिंदगी हजों के आप अंबार लगा दें, उन्हें लगा दें, कुछ नहीं मिलता, वो सराउंडिंग्स है, शुगर कोटेड चीजें हैं सारी। तो अलमाल उसको बुनियाद पर रखा है अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रास है, रासुल हकीकत, रासुल फितना है, रास समझते ना, बुनियाद है इस चीज की, जो उसमें डूबता आपको नजर आ रहा है ना, समझ रहे खतरे में चला गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया बर्बाद हो गया। बड़ा मुख्तसर बात कर रहा हूं आपसे, और भी फितने हमने देख रहे हैं, इस फितने के साथ इंसान नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो हराम, सबसे पहले हराम है, हलाल खत्म हो जाता है, वो तो बिल्कुल फिनिश होती है किताब, उसको कोई समझा ही नहीं सकता, उसको समझ भी नहीं आएगी बात, अकल ही नहीं आएगी उसको कि इसको कैसे मैं बुरा कह दूं, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, क्योंकि डूब चुके हैं उसमें माल के अंदर। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया कि हर उम्मत का फितना है, लेकिन मेरी उम्मत का जो माल खाए, मार खाएगा ना, जो दीन बेचेगा, जो अपना ईमान खत्म करेगा, जो इस दुनिया से बेईमान होकर जाएगा, वो कौन होगा? अलमाल, माल को पकड़ने वाला शख्स। आगे चले, अब कितनी प्यारी बात की अल्लाह के नबी ने, दोनों चीजें बता दी, आगे क्या फरमाया? छोड़ा नहीं उम्मत को, कहते जब जहां भी तुम पनाह मिले तुम्हें, अल्लाह पनाह मिल जाए तो फौरन पनाह ले लेना, इसका मतलब है देयर इज शेल्टर। इस बचने से, इन फितनों से बचने के लिए, ईमान को हिफाजत के साथ ले जाने के लिए अल्लाह के नबी ने क्या बताया कि शेल्टर है, देयर शेल्टर, कि जब वो शेल्टर नजर आए तुम्हें, दूर से नजर आए, बत्ती जल रही है, जैसे सहरा के अंदर किसी चीज को तलाश कर रहे हैं ना, आदमी तलाश करता है, हल्की सी लाइट देखते हैं तो भागता है, या जहरा में आप सफर कर रहे हैं, हमने तो सफर किया, हमें पता है वो जो लहरें होती हैं ना रेगिस्तान की, तो लगता है पानी है दूर से, हम भागते थे कि पानी है, पानी नहीं होता था एक्चुअली, वो लहरें होती थी, किस चीज की? डस्ट की, साइंस की, वो पानी लगता है। तो हकीकतन जब कोई लाइट नजर आए ना हकीकत में, तो आदमी भागता है उसकी तरफ, तो इसी तरह ही जाए पुनः अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहां तुम्हें नजर आ रही है ना, अगर इस फितने में बहुत डिम लाइट में नजर आएगी तुम्हें, कहीं की चलती नजर आएगी, हर एक को हकीकत ना समझ लेना, जब वो लाइट नजर आए तो क्या फरमाया आपने, क्या करें फौरन, तो लगता है ऐसे कि जो उसमें पनाह में आ गया वो ईमान के साथ चला गया, इस नीयत के साथ आ गया कि भाई मैं तो फंस चुका हूं, मैं अब कैसे निकलूं, इस नीयत को लेकर मैं बचना चाहता हूं इससे, ये नहीं कि मैं उसके अंदर आगे करना चाहता हूं, ये दो तो नुकते अलग है, समझ रहे बात, उस शेल्टर में आके मैं महफूज हो गया, यही काम मैंने करना है और करना है टिका के, एक और अजीम धोखा दे रहा है, शेल्टर को खत्म कर रहा है, नहीं जो ये सोच के शेल्टर ले रहा है कि भाई मैं इससे बचना चाहता हूं, बच नहीं पा रहा तो मैं शेल्टर में आके बचना चाहता हूं, फिर वो शेल्टर काम करता है। बड़ा बारीक है इस्लाम की चीजें, आप कोर्स में बहुत बारीक चीजें चलती हैं, इसको आप सतह हम तो लेते हैं ना हर चीज, लेकिन बहुत ही डेलिकेट रास्ते हैं, हर जिक्र जिक्र तो नहीं ना, बात समझे, अल्लाह वाली की सोबत तो सोबत नहीं ना, नहीं पहले क्या चीज करना पड़ता है, नियत करनी पड़ती है कि मैं वाकई ये इस काम के लिए ये काम कर रहा हूं, तो फिर जाके अल्लाह की तरफ से वो तासीर पैदा होती है। मना तासीर पैदा नहीं होगी, आप सारी जिंदगी बैठ के अल्लाह हु करते रहे, मंदिर थे बंदरी रहे, काम किसे चलेगा जब अपना और रब का ताल्लुक जो अंदर का वो सीधा कर ले, या अल्लाह मैं हाथ खड़ा करता हूं, यहां से बचने का रास्ता ही नजर नहीं है, मैं इस फितने में डूब चुका हूं, औरत का फितना है, फला फितना है, जो भी फितना है, माल का फितना है, अब मैं डूब चुका हूं, अब मैं बचने के लिए तेरी शेल्टर ले रहा हूं, एकदम अल्लाह की रहमत आएगी। हम क्या करते हैं, शेल्टर हम ले इसलिए रहे कि काम चलता रहे हमारा, ताकि बस बच जी, हम तो ये कर तो रहे ना जी, अब बचाएगा कौन, तो बच ही नहीं रहे। पहली नीति है कि आप बचेंगे, एक आग जल रही है, अल्लाह कानून जी, एक आग चल रही है, और आप उस बचने बच ही नहीं, आप आग में जलना चाहते हैं तो आग आपको जला देगी, लेकिन अल्लाह अल्लाह कदीर है, अल्लाह की शान क्या है, एक आग जल रही है और उस आग के बचना चाहते हैं, अल्लाह ताला का इशारा करते हैं, तो अल्लाह ताला रास्ता कोई नहीं, इस आग के अंदर मैं जा रहा हूं, बचाने वाले तेरी जात है, तू मुझे बचाए इस आग से, आग आपके लिए गुलजार बन जाएगी, बाहर बन जाएगी, क्यों, असल चीज है कि आपकी नीयत है बचने की, आप छोड़ना चाहते हैं उस चीज, आप बचना चाहते हैं उस चीज से, तो जो आदमी से बचना चाहता है तो शेल्टर है बचने की, क़यामत तक चलेगी शेल्टर अल्हम्दुलिल्लाह उससे बचने के लिए। जब ऐसे हालात होंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी शेल्टर्स क्या है, अहले जिक्र, अहले अल्लाह, अल्लाह वालों की सोबत है, अल्लाह वालों की मजालिस है, और अल्लाह का जिक्र ऐसी है वो शेल्टर, इतनी बड़ी शेल्टर अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया कि तू बाग पनाह के लिए भागते रह, सारी फितने तेरे पीछे भाग रहे हैं, पूरे फितने तेरे पीछे रहेंगे, तू कहता है मैं बचना चाहता हूं, कोई मैंने कहा ना आपको नियत कर लिया बचना चाहता हूं, अल्लाह ताला इससे निकाल में डूब गया हूं, तो किस तरह निकला है ये फितना, उसने एडमिट कर लिया ये फितना है, हम तो करते नहीं ना, नहीं जी किधर क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया जी, क्यों कहता है जी, मजबूरी है जी, हम यही कहते हैं, लेकिन किसने कहा वाकई ये फितना है, अल्लाह ताला मैं समझ गया हूं मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि जबान मुबारक निकला है अल्लाह के नबी की जबान से निकला है, तो मैं इसको फितना मानता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, इसको खत्म करना चाहता हूं, तो इसके लिए क्या, जो इंसान भागता है शेल्टर के लिए, दौड़ लगाता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो मैं तुम्हें एक किला बताता हूं, वो ऐसा किला है कि उसके अंदर तुम जाओगे तो दुनिया का कोई फितना भी तुम्हारे पर असर नहीं करेगा, अब वो जिक्र अल्लाह है, अल्लाह ताला हम फितनों से बचाए, खात्मा ईमान सिखा जाए, तो भाई ये बहुत जरूरी चीज है, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, थिंक, हमें सोचना चाहिए कि हम कम अज कम वो शेल्टर हमने लिया ही नहीं लिया, हम अल्लाह का जिक्र कर अल्लाह की मजालिस में बैठते हैं, नहीं आते, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, दोस्त हैं आप सारे दोस्त हैं कि भाई अगर हम यहाँ ना आते इस मस्जिद में तो यहाँ जिक्र का पता ही ना किसी को जिक्र क्या होते हुए, हसबन अल्लाह क्या है, लैलन तस्मा क्या है, किस तरह पढ़ते हैं, तस्बीहात क्या करते हैं, माजर से बात कर रहा हूँ, मस्जिद मक्की में जाता हूँ, कौन करता करता था जिक्रिया मस्जिद में, नहीं था 35 साल 40 साल से आप जानते हैं, कहीं भी नहीं था, तो अल्लाह इंतजाम फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं, अल्लाह ताला, तो उसने वादा किया कयामत तक पूरी बोर्डर में घुमा दी अल्लाह का जिक्र उसने और फिर उसने ऐसा सिस्टम किया है, क्योंकि शेल्टर है, पना गाह है, अल्लाह ताला तो पूरी उम्मत को बचाना चाहते हैं, नबी पाक ने कहा है कि बचो जहां मिल जाए बचो, तो ये इंतजाम कर दिया उसने, ये लगा दिया, ये कर दिया, अब क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी एक ऐसी फैमिली मिली कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए, हम जान पहचान कुछ नहीं, एक खत्ते से कहते हैं आपका जिक्र है जिसने हमारे बच्चों को बचा लिया, ये शेल्टर, मैं कहा अल्लाह के नबी की जबान से जो चीज निकली है वो पत्थर पे लकीर है, आपने कहा शेल्टर में पनाह गाह है, अगर मिल जाए तुम्हें, अगर मिल जाए तो फौरन चले जाओ उस पनाह गाह के अंदर, और इंतजाम है उसका, अभी क्या है कि ये जो सारा जो जिक्र होता है आप समझते हैं आप ही जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त बैठे हूँ, व्यू सुन लिया कि हजार 1500 हमारी मजलिस जो थी रमजान की 22,000 होता था एक मजलिस के अंदर, 22,000 25,000 तक तो मैंने देखा है एक हफ्ते के अंदर, अब पूरे रमजान होगा तो लाखों तक जाता है औरत मर्द, तो क्या हमारे तो बुद्धू होंगे, जिंदगी बदल, शेल्टर लिए उन्होंने, पनाह लिए, दुनिया के हर कहते हैं देखो बुराई तो है ना, अल्लाह की इस्लाम आपको कहता है फलाना जगह ना जाओ, इस्लाम तो नहीं कहता, हर जगह जाओ लेकिन शेल्टर ले लो, हर जगह जाओ, पूरी दुनिया हमारी है, पूरे इंसान हमारे हैं, इंसानियत है हर जगह, कोई ऐसी चीज नहीं। इस्लाम आपको तो जाना ही चाहिए दुनिया के कोनों में। आप अमन लेके जा रहे हैं, पीस लेके जा रहे हैं, सुकून लेके जा रहे हैं, कुरान लेके जा रहे हैं, दुनिया इंसानियत के लिए आप बहुत बड़ा पैगाम लेके जा रहे हैं, मोहब्बतों के पैगाम, आखिरत के पैगाम, हमदर्दियों के पैगाम, गलतफहमी को दूर करने के पैगाम। इस्लाम तो है ही, हमारा जान तो बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने कहा हर जगह जाओ भाई, क्या उनकी गलतफहमी को दूर करो, वो तो तुम्हें देख के प्यार करेंगे। असल मुसलमान बनो, असल कोई नफरत तुमसे नहीं करेगा। ये तो है, अल्लाह ने इसी तरह इंतजाम किया है, टेक्नोलॉजी लगा दी पूरी दुनिया के अंदर। रमजान में तो लोग इस तरह दुआएं देते हैं कि हजरत कमाल हो गए, कैसे ऐसे वक्त में हमें अल्लाह का जिक्र मिला है कि तुम सोच नहीं सकते। जब उनके लिए इतना आसान है तो आप लोग जो टूटे हुए मेरे पीछे घुसे रहे हो चिमटे रहे हो, तो कितना बड़ा अल्लाह ने आसान किया है। कोई कुछ आपका नुकसान हो, भूल गए ना तकलीफें थोड़ी सी, रमजान की वो असर की मजलिस है, क्या मजलिस थी वो, क्या मजलिस थी। मुझे जो पैगाम निकले जिन्होंने समझ गया अल्हम्दुलिल्लाह और जिन्होंने उस पर अमल कर लिया, वो तो बैठे बैठे जन्नतों में पहुंच गए। तो ये हमें शेल्टर तो मिल रहा है। अब कितने अफसोस की बात है, माजर से कह रहा हूं, भाई पूरी दुनिया तो एंजॉय करे, तोबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, जिक्र में बैठे, और जिनके सामने बैठा हूं वो जिक्र ही ना सीखे उनको जूझने रहेंगे हम जिक्र सीख लें, हजरत आए इनसे पूछने हमें भी जिक्र बता दें थोड़ा, हम क्या जिक्र करें ना, वो शैतान ने जंजीरें बांधी। यानी है ताजू या नहीं, मानते हैं फितने हैं यहाँ दुनिया के अंदर, ये फितना नहीं तो और क्या है। अल्लाह के नाम इलाज बता रहे हैं फितने से निकलो, हम कहते हैं नहीं ये मैं फितने ही पसंद है। अल्लाह के बात लो, ये फितने के ज़माने से कुछ नहीं बचेगा, बेहतरीन चीज़ है अहलुल्लाह का मजलिस और अल्लाह का जिक्र, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, उनका अमल, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझना, अपनी गलती पर गलती महसूस करना, जिंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह जिंदगी बन जाती है। किसी कोई जमाने का फितना हम पे क्या असर कर सकता है, चाहे दुनिया में जो कुछ होता रहे मुसलमान पे असर नहीं होता। जिसके हाथ में कुरान है, अल्लाह का जिक्र है, बड़ा खुश होकर जिंदगी गुजारते हैं। जी ये हो गया, फला हो गया, जी हो गया, हमें काम तो असर नहीं पड़ा, हम तो अपनी जिंदगी में मस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें क्या कोई असर करेगा, कभी नहीं करता सर। शेल्टर जो ली हुई है, शेल्टर लें, एंजॉय करें, पूरी दुनिया जहां जाए जिस तरह करें अल्हम्दुलिल्लाह, कोई असर नहीं होगा। करना चाहिए जिक्र नहीं भाई, जिक्र करें और इस नीयत से करें जो नीयत मैंने आपको बताई है, कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान के साथ कर दे, और अल्लाह ताला हमारा जो हिसाब, जिस तरह नबी करीम जिस तरह दर्द, जो मुश्किलात, जैसे जैसे वक्त और जैसे जैसे उन्होंने दुआएं हमारे लिए मांगी, पूछें आयशा सदीका से, पूछें किस तरह रोए हैं रातों को उठ के हमारे लिए, आखिरी वक्त तक ये कहा कि मेरी उम्मत को बख्शेगा तो मैं राजी हूँ, मेरी उम्मत को बख्शेगा तो मैं राजी हूँ। कितना हमदर्दी, कोई दुनिया के अंदर हो सकता है ऐसा हमदर्दी, मुझे बताया ऐसा कोई मौसम हो सकता है। हम उनकी बातों को छोड़ दें, कभी नहीं। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान के साथ करें।